सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेश्वर। ओम नमः सिद्धेश्वर। ओम नमः सिद्धेश्वर। ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौवसाहूणं प्रणमीय शिरसानेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुक्कीर्तनं वोचं परमभये सबखण्डिके परमकाण्डसमुदाय सहजखण्डितज्ञानमय जयवन्ते जिनराय विघ्नहरण मंगलकरण नमो सिद्ध सुखकार नेमिचंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने उस पर सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका लिखी है, उसी का यह हिंदी अनुवाद है और हम पृष्ठ संख्या 76 पर आ गए हैं। 34 नंबर की गाथा पढ़ने जा रहे हैं हम। 75 पृष्ठ में पृष्ठ पर लिखा है कि अभी जो विषय आने वाला है कि नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों में अभेद विवक्षा से जो प्रकृतियां गर्भित है उन्हें दिखाते हैं, यानी 93 के बदले कुछ कम करके वो अभेद विवक्षा बताएंगे। गाथा पढ़ेंगे पहले। देहे अविनाभावी बंधन संघाद इदि अबंधु दया वन्न चौके अभिन्ने गहिले चत्तारी बंधु दये। देहे अविनाभाविनो बंधन संघातौ इति अबंधोदयो वर्ण चतुष्के भिन्ने गृहीते चतस्रः बंधोदययोः। देह जो पांच प्रकार के शरीर नामक नाम कर्म, देह नाम कर्म यानी शरीर नाम कर्म कितने प्रकार के? पांच प्रकार के। उनमें अपने अपने बंधन और अपने अपने संघात अविनाभावी है। जब औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है तो औदारिक शरीर बंधन का भी उदय है और औदारिक शरीर संघात का भी उदय है। तो शरीर बंधन और संघात अपने अपने नाम वाले तीनों का ही उदय एक साथ होगा। उसके बिना वह न हो उसे अविनाभावी कहते। अविनाभावी का अर्थ क्या है? जिसके बिना जो न हो, यानी एक है तो वहां दूसरा होगा ही होगा, उसको कहेंगे अविनाभावी। इस कारण वे पांच बंधन और पांच संघात ये 10 प्रकृतियां बंध रूप और उदय रूप नहीं है। 148 में जो हम 93 नाम कर्म की देखते हैं उसमें इन 10 को नहीं भी गिने तो चले, क्योंकि शरीर नाम कर्म में वो गर्भित है। भावार्थ बंध हृदय में ये 10 जुदे नहीं कहे, शरीर नाम कर्मों में ही गर्भित किए गए। यानी अभी क्या कहना चाहते हैं, 148 के बदले 122 प्रकृतियां बताने वाले और 122 का हिसाब बताएंगे, तो ये 10 कम कर दी। और कितनी कम करनी पड़ेगी? हाँ, और 16, तो अभी उसकी बात करेंगे। पुनश्च वर्णादि 4, वर्ण गंध रस स्पर्श, इसके कितने भेद किए हमने? वर्ण के कितने किए नितिन भाई? पांच के, हाँ गिनो अभी, गंध के हाँ पांच दो सात हुए, रस के हाँ कितने हुए, सात पांच बारह हुए, और स्पर्श के आठ, कितने हुए बीस। तो इन बीस के बदले केवल हम वर्ण गंध रस स्पर्श इतना ही कहेंगे, तो कितने गिने हमने, चार। तो बीस के बदले चार गिने तो सोलह वहां कम, क्योंकि जो अपना अपना वर्ण होगा उसका, उसमें वो गर्भित है, हमने उसको अभेद कर दिया, तो ये सोलह भी हम निकाल सकते हैं। तो पहले वाले दस और ये सोलह, छब्बीस को हम उसी में गर्भित करेंगे तो उतनी 93 में से वो 26 कम कर देंगे। देखो वर्ण गंध रस स्पर्श इनमें अभेद विवक्षा से इनके 20 भेद ग्रहण किए, यानी वर्णादि चार में 20 ग्रहण कर दिए अभेद विवक्षा से, यानी 20 के बदले चार कहे तो हमने अभेद विवक्षा लगाई। ये मूल चार ही प्रकृतियां बंध और हृदय में कहते हैं की बात है वहां अधिक, परंतु कहेंगे चार, उनके 20 भेद मूल चार भेदों में गर्भित किए हैं, इसलिए 16 प्रकृतियां बंध और हृदय में जुदी जुदी नहीं कही। ऐसा होने पर, यानी अब यहां से आगे जो कथन होगा 122 वाला होगा, 148 वाला नहीं होगा। ऐसे होने पर वे बंध रूप, उदय रूप और सत्ता रूप प्रकृतियां कितनी कितनी है वह चार गाथाओं द्वारा कहते हैं, यानी अभी तो हमने उसको अभेद कर दिया नाम कर्म में, ये 26 कम कर दिया हमने, 16 और 10 उसी में गर्भित करके बताएं। अब यहां फिर दोबारा टोटल बताएंगे प्रत्येक मूल प्रकृतियों में उत्तर प्रकृतियां कितनी है 35 नंबर की गाथा में। पंचनवतो निछवी समवी अचौरो कमेन सत्तट्ठी दोन्नीय पंचय भणिया एदाओ बंद पयलियो पंचनव द्वौ षड्विंशति रपि च चतस्र क्रमेण सप्तषष्टि द्वौ च पञ्च च भणिता एता बंध प्रकृतयः। देखो क्रम से बताएं, पहला किसका नाम है ज्ञान, दूसरा तीसरा वेदनी, बहुत अच्छा, और चौथा
मोहिनी।
देखो अभी यहाँ पहली लाइन में देखो, संस्कृत देखो तो ज्यादा ख्याल आएगा, पंच एने पांच, नव एने नौ, द्वौ एने दो, और आगे कितने लिखे षट विंशति एने छब्बीस, किसकी, हाँ कौन सी दो रहेगी, हाँ हाँ क्या हुआ उसका, बहुत अच्छा, उदय भी है, बंध नहीं है, बंध नहीं है, क्या कहा, बंध नहीं है, बहुत अच्छा, क्योंकि एता बंध प्रकृतियां, सेकंड लाइन में लास्ट क्या लिखा, एता ने ये सारी बंध प्रकृतियां हैं, उनकी बात है, बंधने वाली कितनी उसका हिसाब चल रहा है। तो हमने देखा ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की नौ, वेदनी की दो और मोहिनी की 26, फिर चतस्र यानी चार, किसका नंबर है ये, आयु का, सप्तषष्ठी कितने हुए, 67, क्यों
26 एंड 30,
93 में से हमने 26 कम किए थी, कितने रह गए थे 67, ख्याल में आया, पहले हमने 93 गिनी थी, अभेद उसमें अभेद विवक्षा लगाई तो उसकी 67 हो गई। बंधन और संघात जो पांच और पांच दस है वो शरीर में ही गर्भित कर दी, और वर्ण रस गंध स्पर्श की जो बातें हैं 20 के बदले चार कह दी तो उसमें गर्भित हो गए। शराब इन ख्याल में आई बात, देखो हम इसकी टीका पढ़ेंगे, पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, 26 मोहनीय, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये दोनों बंध में नहीं है, उदय और सत्व में ही पाई जाती, चार आयु, 67 नाम कर्म, क्योंकि 93 में से 10 बंधन संघात यानी बंधन और संघात मिलकर 10, और 16 वर्णादि ये 26 गर्भित करा के घटा दिए, दो गोत्र पांच अंतराय। इस प्रकार ये सब 120 प्रकृतियां बंध योग्य है, ऐसे ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। बंध योग्य कितनी हो गई? 120। और टोटल ऐसे कितनी होगी? 122। और वो अभेद भेद कर करके कहेंगे तो 148। नाम कर्म में हमने अभेद विवक्षा लगाई, बाकी अन्य में कहीं में वो अभेद वाली बात नहीं होगी। पहला ही बात। आगे उदय प्रकृतियों को कहते हैं। अब उदय रूप कितने होगी हम पढ़ने के पहले देखेंगे। बोलो, अभी तो वहां लगाई थी अपेक्षा। किसने बताया? आप ही ने बताया कि किसी ने प्रॉन्टिंग किया? खुद ने बताया, कोई बात नहीं। हाँ, उदय में और सत्व में वो दो गिनना है जो हमने बंध में नहीं गिनी थी।
उदय में,
उदय में भी है और सत्ता में भी है। एक जीव के एट ए टाइम की बात नहीं चल रही है। अच्छा, किसी न किसी जीव के, यानी वो बंधे योग्य है कि नहीं है, उदय योग्य है कि नहीं, इतनी बात है।
नहीं, हमने एक जीव की अपेक्षा
नहीं, नहीं, वो उसको बंध स्थान उदय स्थान कहेंगे, वो बात नहीं है। पर
एक जीव की अपेक्षा एट ए टाइम कितने बंधेंगे ऐसा,
वो बात अलग। एक जीव के एट ए टाइम कितनी बनती, वो तो बंध स्थानों में बात आएगी, तो हर एक अनुष्ठान की अलग अलग बातें होगी। वो अभी नहीं कहना है, घोटाला नहीं करना है, क्योंकि जिस क्रम से जा रहे हैं ना उसी क्रम से जाएंगे। जब उसका विषय आएगा, आने वाला है ना, कर्मकांड है तो सभी विषय आने वाले हैं। अभी जंप नहीं मारनी है। आप ही बता दो फिर। चलो
मैं क्या इनको मास्टर साहब को मास्टर साहब 117 मिथ्यात्व जो होगा,
इन्हें सभी कर्मों की बात है, वो भी नाना जीवों की बात है, एक जीव की नहीं। एक जीव की बात नहीं, एट ए टाइम कोई 117 बांधेगा ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मिथ्यात्व बनता है, 16 कक्षा एट ए टाइम बनते हैं, भय जुगुप्सा बनती है, बनती है। यानी ये तो 17 तो बंधेगी ही, 17, 2, 19 तो बंधेगी ही बंधेगी। परंतु 7 प्रतिपक्ष वाली, वो तो विषय आने वाला है अभी। हास्य रति बंधेगी या शोक रति बंधेगी, और एट ए टाइम 3 वेद तो बंधेगी नहीं, कोई एक वेद बंधेगा, इसलिए उसमें वेरिएशन होगा।
117
वो तो टोटल नाना जीवों की अपेक्षा बात है, यहाँ आपने एक युग की अपेक्षा पूछा। नाना जीवों की अपेक्षा 117 बंध योग्य है। यहाँ पर कोई ना कोई जीव बांधता है मिथ्यात्व गुणस्थान में। तीर्थंकर और आहारक जी का नहीं बंध होता है यहाँ पर। ये बात अभी आने ही वाली है।
सम्यक प्रकृति वो भी नहीं,
वो तो बनती ही नहीं, किसी को भी नहीं बनती। 120 का हिसाब लगाना है बंध में। अब वो तो विषय आगे का है, उसकी चिंता अब मत करो। अभी उदय योग्य कितनी उसकी बात करेंगे। क्रम से जाएंगे तो अधिक अच्छा है, क्योंकि नए लोगों को वो ठीक रहेगा। 36 नंबर की गाथा।
उदय
पंचनव दोन्नी अठा विषम चौरो कमेन सत्सट्टि दोन्नीय पंचय बनिया एदाहो उदय पयडियो पंचनव द्वौ अष्टा विंशति चतस्र क्रमेण सप्तषष्टि द्वौ च पंच च भणिता एता उदय प्रकृतयः। देखो 5, 9, 2, 28, 4, 67, 2, 5 कहाँ डिफरेंस है? नैन्सी भाई आप बताएंगे। पहले हमने जो पढ़े थे और इसमें क्या डिफरेंस? हाँ, उसमें क्या देखा था? 5, 9, 2 और 26 और यहाँ कितने? 28। कौन से दो बट सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, दो प्रकृति बढ़ेगी। देखो ज्ञानावरणादि कर्मों की अनुक्रम से 5, 9, 2, 28, 4, 67, 2, 5 प्रकृति मिलकर 122 उदय योग्य होने योग्य प्रकृतियां कही हैं। यानी अभी हमारी क्या कंक्लूजन है कि 120 प्रकृतियां बंध योग्य है और 122 प्रकृतियां उदय होने योग्य। आगे उन बंदर रूप और उदय रूप प्रकृतियों की भेद विवक्षा से तथा अभेद विवक्षा से संख्या कहते हैं। टोटल संख्या बताएंगे। भेदे छादाल सयम इदरे बंदे हवंति वीससयम भेदे सव्वे उदये बावीससयम अभेदमनी भेदे षट्चत्वारिंशत् शतमितरे बंधे भवन्ति विंशशतम् भेदे सर्वे उदये द्वाविंशशतम् अभेदे। देखो भेदे ने भेद में कितने हुए षट्चत्वारिंशत्, शत और चत्वारिंशत् कितने हुए
146।
शत चत्वारी और आगे शत लिखा है ना। हाँ। शत चत्वारिंशत् शतम, शतम मैंने नहीं कहा था, शतम ही है। शत चत्वारिंशत् शतम, शतम मैंने 100, चत्वारिंशत् यानी 40 और शत यानी 40। हमेशा बाद वाला आंकड़ा पहले बताया जाता है। हम क्या कहते हैं 46, 54, 24, पहले चार का नाम लेते फिर 20 का नाम लेते। ऐसे पहले यहाँ षट यानी 6 का नाम लिया, चत्वारिंशत् यानी 440 हुए और शतम 100 हुए। यानी भेद करने पर 146 प्रकृतियां होती है। किसके बंदरूप की बात चल रही है? इतरे, इतरे ने जो भेद रूप नहीं वो क्या है?
अभेद।
इतरे ने उसका उल्टा, अभेद में कितने हैं? बंधे भवंती व्यूंश शतम, व्यूंश शतम, व्यूंश ने 20 और शत ने 100, 120। अभी हमने गिने ना, वही बात यहाँ टोटल गिन रहे हैं। वहां तो अलग अलग बताई, यहाँ उनकी टोटल बता रहे। यानी भेद की विवक्षा से बंधने योग्य प्रकृतियां 146 भेद की अपेक्षा, और यदि हम अभेद की अपेक्षा करेंगे तो 120। अब उदय की बात करेंगे। भेदे सर्वे उदय, भेद की अपेक्षा सर्व प्रकृतियां उदय योग्य है। सर्वे ने कितनी? 148। और द्वाविंश शतम अभेदे, द्वा ने 2, विंश ने 20, शत ने 100, 122 प्रकृतियां उदय रूप है। किसमें? अभेद विवक्षा। अब हम नीचे टीका पढ़ेंगे। बंध में भेद विवक्षा से अर्थात गर्भित न करे तो मिश्र ने सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति बिना 146 प्रकृतियां हैं। बंध में भेद विवक्षा से 146 प्रकृतियां बंध योग्य। अभेद विवक्षा से अर्थात गर्भित करे तो 120 प्रकृतियां हैं। उदय में भेद विवक्षा से सर्व 148 प्रकृतियां हैं तथा अभेद विवक्षा से 122 प्रकृतियां हैं। तो जहाँ आगे भी कहीं हिसाब चलेगा बंधों का और उदय का, तो 120 22 वगैरह उसका चलेगा 122। आगे सत्व प्रकृतियों को कहते हैं। सत्व किसे कहना? जो सत्ता में पड़ी रहते हैं बंधने के बाद, जो जब तक उदय नहीं है तब तक उसको हम कहेंगे सत्व प्रकृतियां। उसकी बात करेंगे अभी। पंचणव दोन्य अठाईसम चौरो कमेन तेन उदी दोन्य पंचय वणिदा एदाओ सत्तपयरियो पंचनव द्वौ अष्टाविंशति चत्वारः क्रमेण त्रिनवति द्वौ च पञ्च च भणिताः एता सत्व प्रकृतयः। पहले बंद की बताई, फिर उदय की बताई, फिर दोनों की मिलकर टोटल बताई। अब यहाँ सेपरेट सेपरेट बता रहे हैं। पंच, नौ, द्वौ, अष्टाविंशति, क्योंकि बंद में नहीं है परंतु सत्ता में तो है ना, इसलिए 28 ले ली। चत्वारः, त्रिनवति, त्रिनवति यानी 93, दो और पांच, ये सत्व प्रकृतियां हैं। देखो टीका। ज्ञानावरणादि कर्मों की अनुक्रम से पांच, नौ, दो, 28, 4, 93, 2 और 5 ये सब प्रकृतियां मिलकर 148 सत्वरूप प्रकृतियां सर्वज्ञ देव ने कही है। ये भी हमने भेद करके बताए, अभेद से बताएंगे तो कितनी हो जाएगी, 122 हो जाएगी। बहुत अच्छा। अब यहाँ तक अभी तक हमने मूल प्रकृतियां देखी, उत्तर प्रकृतियां देखी, उनके भेद विस्तार से देखे, उनके नाम देखे, वो शब्द कैसे तैयार हुए, ऐसा उसका कार्य क्या है वो भी देख लिया। अब जो घाती कर्म और अघाती कर्म, ऐसे मूल दो भेद बता रहे, बिल्कुल बेसिक है ये तो, ये हमने बहुत बार सुना भी है, विषय अभी तक तो बिल्कुल आसान चल रहा है। पहले जो घाती कर्म कहे थे उनके दो भेद है, सर्वघाती और देश के। पहले कौन से घाती कर्म देखे थे सुशीला बेन? बहुत अच्छा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये घाती कर्म है। अब उसमें क्या बता रहे, उनके दो दो भेद है, सर्वघाती और देशघाती। प्रकृतियों के भेद चल रहे यहाँ पर। ये जो ज्ञानावरण आदि प्रकृतियां देखी हमने, अभी ज्ञानावरण की 5 है, दर्शनावरण की 9 है, उनमें से कुछ प्रकृतियां सर्वघाती है और कुछ प्रकृतियां देशघाती। वहां सर्वघाती प्रकृतियों के नाम तथा संख्या कहते हैं, इनमें से कौन कौन सी प्रकृतियां सर्वघाती है इसकी बात करेंगे। केवल नानावरणम् दंसन चक्कम कषाय वारसयम् मिच्छम च सौवगादी सम्मा मिच्छम अदम् लम्नि। केवल ज्ञानावरणम् दर्शन षटकम कषाय द्वादशकम् मिथ्यात्वम् च सर्वघातीनि सम्यक् मिथ्यात्वम् अबन्धे। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, स्त्यान वृद्धि आदि 5 निद्रा। ऊपर क्या लिखा था, दर्शन षटकम, यानी दर्शनावरण में 6 देखे थे, एक केवल दर्शनावरण और अन्य 5 तो निद्रा है, मिलकर 6 हो गए। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 12 हो गई। यानी अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, मिलकर 12 जो है वो सभी क्या है, सर्वघाती है। मिथ्यात्व, ये सर्व 20 प्रकृतियां सर्वघाती है। 20 प्रकृतियों के नाम कहेंगे कोई, सरला भी नाम बताएंगे? हाँ, केवल ज्ञानावरण, हाँ, हाँ, 12 कषाय, हाँ, मिथ्या, बहुत अच्छा। ये सारी, यानी ज्ञानावरण में कितनी सर्वघाती है, केवल ज्ञान। दर्शनावरण में कितनी है, हाँ बहुत अच्छा, ये 6 हो गई। और फिर मोहनी में कितने हैं, मोहनी में मैंने पूछा, हाँ मिथ्यात्व को कहाँ डाला, मिथ्यात्व को भी लेना है। और ये बंद की बात चल रही है, उदय में और सत्व में सम्यक मिथ्यात्व को भी हम सर्वघाती में डालेंगे। यहाँ सम्यक मिथ्यात्व का नाम लिखा है, पर सम्यक मिथ्यात्व हम अबंधे, वो अबंध में लेना, नहीं बंधने वालों में लेना। देखो अभी यहाँ से पढ़ेंगे हम, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, स्त्यान वृद्धि आदि 5 निद्रा, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोधमान, मायालोभ, ये 12, मिथ्यात्व, ये सर्व 20 प्रकृतियां सर्वघाती है। सम्यक मिथ्यात्व बंध में नहीं है, उदय और सत्ता में ही जुदी ही जाति की सर्वघाती है, इसलिए बंध में 20 प्रकृतियां सर्वघाती है और उदय और सत्व में 21 प्रकृतियां सर्वघाती है। ये बात ख्याल में आई नैन्सी भाई, ख्याल में आई बात? ज्ञानावरण 5 है, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, इनमें से सर्वघाती कौन कौन सी है, केवल ज्ञान। अभी तो सर्वघाती कौन सी उसको बताए, वो क्या है, क्या करती है, वो तो बात आगे आएगी। त तो बंध में 20 प्रकृतियां सर्वघातीय कहा ना, और उदय और सत्व में 21 प्रकृतियां सर्वघाती है। अब कहते जिनके उदय होने पर जीव का गुण सर्वथा प्रकट न हो उन्हें सर्वघाती प्रकृति जानना। जैसे केवल ज्ञानावरण का उदय होने पर केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, ये गुण प्रकट नहीं होता का अर्थ क्या है? नहीं, जितनी शक्ति है जीव की वो पर्याय में प्रकट नहीं होती। शब्द तो आया है सर्वघाती, यानी पूरा घात करता है। किसका घात करता है, द्रव्य का कि गुण का? बहुत अच्छा, ना द्रव्य का ना गुण का, पर्याय का घात करेगा तो पर्याय बिना का द्रव्य हो जाएगा। तो कहते पर्याय का भी घात नहीं करता है, ये जैसी शक्ति है वैसे पर्याय में प्रकट नहीं होती तो उसको घात करना कहते हैं। उसका शब्दशः अर्थ कुछ अलग है और उसका क्या है, हाँ पर्याय का घात करते हैं बोलेंगे, परंतु हमें ये मालूम होना चाहिए कि पर्याय बिना का तो नहीं हो जाएगा द्रव्य। हाँ, जो केवल ज्ञान की शक्ति अपेक्षा जीव में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, हर जीव में अभव्य में होगी कि नहीं होगी? है हाँ, वो उस द्रव्य में उस रूप पर्याय में प्रकट तीन काल में नहीं होने वाला, परंतु जीव है तो केवल ज्ञान की शक्ति है वहां पर। आपका प्रश्न है दर्शनावरण के जो पांच है निद्राएं, तो दर्शन का पूरा घात होता है कि नहीं होता है? बोलो आप। सर्वघाती तो होता है, यदि होता है तो जब तक हम सोते हैं दर्शन का घात हुआ तो दर्शन बिना का जीव हो गया। और हम तो कहते हैं दर्शन और ज्ञान तो हमेशा चलता है, एक समय के लिए भी उसका परिणमन रुकता नहीं है, तो ज्ञान का भी नहीं होगा यदि दर्शन नहीं होगा तो कैसे लेना? बोलो अश्विन भाई, तो मालूम है क्योंकि ये बात मैंने बहुत बार बताई है। आप कहीं
जय बहन आप जानते हैं ना? हाँ लक्ष्मी बोल।
नंदा बहन कहेगी उसको सर्वघाती क्यों कहा? हाँ बोलो अश्विन भाई। अरे मैंने बहुत बार ये बात बताई है। हाँ नहीं है सर्वघाती के सभी स्पर्धक सर्वघाती है।
मैं बताऊं?
हाँ आप बताइए, बहुत बार सुना है ना आपने।
हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही से सुना। यहाँ क्या है कि जो कर्म है वो अपने प्रतिपक्षी को घात करेगा।
प्रतिपक्ष का सर्वघात,
निद्रा किसका घात करता है? जागृत अवस्था का घात करता है, वो केवल दर्शन का नहीं करता।
यानी निद्रा का प्रतिपक्षी कौन है? जागृत अवस्था। दर्शन मत कहना, दर्शन का घात नहीं है वहाँ पर, जागृत अवस्था का घात है। ये बहुत बार बोला है। और ये पंचलब्धि पुस्तक जब लिखी ना उसमें वो ज्यादा क्लैरिटी हुई थी। यशपाल जी ने मुझे ये प्रश्न पूछा दर्शन गुण का घात होता है कैसे होता है, क्या होता है? प्रतिपक्ष का घात होता है। देखो केवल ज्ञानावरण की बात करें, प्रतिपक्ष ने उसका अपोजिट पार्टी
अपोनेंट।
हम क्या केवल ज्ञानावरण, केवल ज्ञान जीव की शक्ति और केवल ज्ञानावरण कर्म, वो किसका घात करता है केवल ज्ञानावरण? केवल ज्ञान का करता है, यानी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने देता। परंतु क्या वो मति ज्ञान को रोक सकता है? बिल्कुल नहीं, केवल ज्ञानावरण है, केवल ज्ञान को रोके मति ज्ञान को नहीं रोक सकता, क्योंकि केवल ज्ञानावरण का उदय हर समय चल रहा है, फिर भी हमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो चल रहे पर्याय में, यानी वो ऐसा पावरफुल नहीं कि मति ज्ञान को रोके, अपने प्रतिपक्ष को रोकता है
वही।
हाँ ख्याल में आई बात है,
यानी अगर केवल ज्ञानावरण
थोड़ी थोड़ी आई
भाई, केवल ज्ञान अभी आपको केवल ज्ञान है क्या? आपको केवल ज्ञान नहीं है तो इसका अर्थ क्या हो गया? आपको केवल ज्ञानावरण है, आवरण है, पर वो आपका मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को अटका रहे क्या? मति ज्ञान को अटका रहे केवल ज्ञानावरण?
केवल ज्ञानावरण का उदय हर समय चल रहा है, 12वें गुणस्थान के अंत तक चलेगा, तभी तक मति शुद्ध ज्ञान दोनों ही है ना सभी जीवों को, मिनिमम तो
है, मनोपरिय है,
किसी को वो भी है। ध्यान में आई ना बात? अभी आपका प्रश्न
एक मिनट उनका पूरा समझने दो। तो ये बता रहे हैं कि केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान को
केवल यानी मात्र ज्ञान केवल ज्ञान को
केवल ज्ञान को रोकेगा और मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण को नहीं रोकेगा।
श्रुत ज्ञान को नहीं रोकेगा
श्रुत ज्ञान को और अवधि ज्ञानावरण अन्य किसी को नहीं रोकेगा। अवधि ज्ञान होने में वो रुकावट करेगा ऐसा। तो अभी
स्पेसिफिक है अपने अपने प्रतिपक्ष के लिए।
अभी आपका ऐसा कहना है कि ये जो निद्रा कर्म है वो क्या है? अभी आपको निद्रा कर्म आवरण है पर अभी हम जागृत अवस्था में उसका उदय समझो होता है नहीं होता है जैसे
उदय होता ही नहीं। जागृत अवस्था में उसका उदय होता ही नहीं।
हाँ
और जब उदय होता है तो जीव निद्रा में इधर निद्रा हो या परिचला हो
जो भी
निद्रा आवरण जो निद्रा वाले जो दर्शन आवरण है उसका प्रतिपक्ष कौन है? तो जागृत अवस्था
सभी निद्रा का।
हाँ यानी ऐसा है और एट ए टाइम एक ही निद्रा का उदय होता है। पांचों में से किसी न किसी निद्रा का उदय एट ए टाइम होगा। एक निद्रा के बाद दूसरे निद्रा में चला जाए जीव वो अंतर्मूर्त होते हैं हर एक का। परंतु ये हम देखते हैं ना छह घंटे सोया उसमें कभी निद्रा में कभी प्रचला में कभी ऐसे उसमें चेंजेस होते रहते हैं।
कभी लार करके तो कैसा है वो जो बताए प्रश्न
हाँ स्वप्न आते
हैं
वो
मन की अवस्था है ना। मन से जानने का जानना देखना दोनों मन की बात चल रही है। देखना है ना केवल आंखों की से देखना नहीं यानी ज्ञाता दृष्टा जो कहते दर्शन दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग दोनों चल रहे। मति शुद्ध ज्ञान वहां चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वहां राग द्वेष भी चल रहे है कि नहीं चल रहे? वो हमने सीरियल भी देखा ना अभी क्या है हम क्या बताएं? जिसने देखा है वो बताओ भाई।
हाँ
ठीक है ना। अगर संगी होगा पूर्व भाव में तो याद क्या सभी जीवों को याद आता है? कोई गधा कोई कुत्ता कोई नहीं था उसमें।
अच्छे लोग कभी देखते हैं
अभी उसमें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ना ये सब प्री प्लान्ड है करके। आप चले जाना ना पता चलेगा। तो चारों भाव मनुष्य का अच्छा है।
ये लोग
नहीं हो सकते वो बात नहीं है परंतु अच्छा ये वो नहीं याद आ रहे
हो
तो ये केवल उन्होंने बताया कि उसके जाके जांच की किसी ने। इतने हाँ तो इसका अर्थ ही क्या है
काल्पनिक
समझ में आते
हैं?
चार सौ साल वो बात नहीं है तो बीच वाले क्यों नहीं आए? बीच वाले क्यों नहीं आए? अगर याद नहीं आता तो बीच वाले क्यों नहीं याद आए? एक बात ये बात है। दूसरी बात किसी ने जाके जांच की है तो ही उसको सत्य मान सकते हैं क्योंकि जाति स्मरण के ऐसे कितने केसेस है कि जो जांच ही गई है वहां जाके उन्होंने पता करवाया है और जाति स्मरण के केसेस हमने देखी है जिनको पूर्व की ऐसे भी याद आती है। ख्याल में आई ना बात?
ये जो सीरियल है ना
अभी सीरियल के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती।
एक ही काम करना सीरियल देखना बंद करो। शास्त्र का स्वाध्याय
ऐसे होता है ना और अपने मन में भी वही बात घुमा करती है ना। वो कुछ नहीं होता है ना कोई भूत की सीरियल आती है कोई क्या आते हैं तो मनगढ़ंत बातें होती है। धंधा ही चल रहा है वो तो मनगढ़ंत है। न्यूज भी मनगढ़ंत आती तो इसकी क्या कथा है? न्यूज जो देते हैं वो सारी सच होती है थोड़ी? वो कितनी वो तो मैनिपुलेटेड होती है।
यह अभी सर्वघाती को देखना ये सब अपना स्वाध्याय का घात कर रहे ये लोग,
यानी ये जो टीवी सीरियल है ना पूरा घात कर रहे हैं। कितना अपने उपयोग का, उपयोग का घात कर, जिसको कहते हैं हम अनर्थ दंड, क्योंकि हम उसमें राग द्वेष करते रहते हैं, उलझे रहते हैं, उपयोग तो बर्बाद होता ही होता है, और हम उसमें सोचते भी राग द्वेष भी होता रहता है हम, और नहीं और उसका बंद होगा कि नहीं होगा, जितने काल तक हमारे वो परिणाम हमने देखा, जितना राग है उतना बंद है, वो देखते देखते कभी रोते भी है तो उसका बंद नहीं होता होगा, संकलित परिणाम नहीं हो रहे वहाँ पर। अच्छा अच्छा, रिग्रेशन की बात, चलो चलो अभी आगे बढ़ेंगे हम।
सवा सात से साढ़े सात,
हम बताएंगे हर एक का रिग्रेशन, सब निगोद में से आए।
अभी रिग्रेट करो,
इसलिए बीच का कुछ याद नहीं आता, परंतु ये भी है कंटिन्यूअस संगी पंचन ही रहेगा तो ही याद आएगा, बीच में श्रृंखला टूट गई तो पहले वाली याद नहीं आएगी, ये भी है। छूट गई उसका उदय, छूट गया, ऐसा भी होता है ना बाहर से, अभी किसी कोई सोया है और बाहर किसी ने उसको सब पता, तो जाग जाता है ना, अच्छा है कि आवरण कम है, और अच्छा मौका है कि हमें चिंतत्व का चिंतन करें, नहीं ध्यान लगाओ ना उस काल में, नहीं नींद आती तो अच्छी बात है, ये इसके याद करो आप 93 प्रकृतियां कौन सी है, हम तो घूमने जाते तभी ये याद करते, 47 नए 47 शक्ति, ये सारी प्रकृतियां प्रतिपक्षी वाली अप्रतिपक्षी वाली, बंद विच्छित्ति उदय विच्छित्ति, चलो नहीं तो क्या सोचेंगे, अरे वो सीरियल में क्या हुआ उसने उसको वो क्या उसके बारे में सोचेंगे, हम घूमने जाते हैं तो दूसरे कोई बाजू से जाते हैं तो बड़बड़ाते, चल क्रिकेट का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वो राजकारण का क्या हुआ, देखो देखो ये हमने अभी तक सर्वघाती प्रक्रिया क्या देखी, बंध में 20 प्रकृतियां सर्वघाती है, और उदय में कितनी है, 22 सर्वघाती की बात कर, सम्यक तो प्रकृति सर्वघाती नहीं है,
सम्यक मिथ्या,
सम्यक मिथ्या तो है, सम्यक तो नहीं है,
21 में सम्यक मिथ्या,
सम्यक मिथ्या तो लेना, जिनके उदय होने पर जीव का गुण सर्वथा प्रकट न हो उन्हें सर्वघाती प्रकृति जानना, यानी वो अपना प्रतिपक्ष गुण समझना, निद्रा के बारे में जागृत अवस्था का नाश है, देखो जागृत अवस्था में दर्शनावरण कितने कर्मों का उदय है, चार। और निद्रा में पांच, हमने देखा एट ए टाइम एक निद्रा होती है, तो निद्रित अवस्था में दर्शनावरण 5 का उदय है और जागृत अवस्था में 4 का उदय, वो अनुदय है, जब वो सोता नहीं तो उसका अनुदय है और कुछ नहीं। देखो यहाँ लिखते हैं, हाँ सर्वघाती का, हमारे अवधि दर्शनावरण का उदय चल रहा है ना, आपका अवधि ज्ञान है कि नहीं है, वो बात आएगी आगे क्षोक्षम में, देशघाती प्रकृति होने पर भी हमें उसका अवधि ज्ञान क्यों नहीं है, देशघाती है तो उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, वो बात आएगी अभी क्रम से। अब कहते आगे देशघाती प्रकृतियों का कथन करते हैं, नानावरण चौकम तिदंसनम सम्मगम च संजलनम नवनोपसाय विग्गम चौविसादेशगादियो ज्ञानावरण चतुष्कम त्रिदर्शनम सम्यक्त्वं च संज्वलनम नवनोपसाय विग्नम षड्विंशति देशघातीनि। मति श्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञानावरण 4, हर एक के साथ ज्ञानावरण लगाना, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण तीन, नौ में से तीन क्यों लिए यहाँ पर, बाकी छह सर्वघाती है। अभी मोहनी में देखी ना, मोहनी की सर्वघाती कौन कौन सी देखी थी अश्विन भाई? बारह कषाय और मिथ्या था। हाँ, अब उनको छोड़कर अब यहाँ देखो, और सम्यक मिथ्या तो भी उसमें ले लिया था। यहाँ कहते सम्यक तो प्रकृति, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ चार, यानी पांच हो गए ना टोटल, और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुसक वेद, ये नौ नौ कषाय। तो मोहनी की कितनी हुई देखो, नौ नौ कषाय, संज्वलन चार और एक सम्यक प्रकृति, नौ पांच चौदह। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, हर एक के साथ अंतराय लगाना, यानी दानांतराय लोभांतराय वगैरह वगैरह, ये 26 देशघाती प्रकृतियां हैं, जिनके उदय होते हुए भी, क्या कहते हैं उदय तो है उसका, तो जिनका उदय होते हुए भी जीव का गुण प्रकट हो, यानी वो जीव के गुण को रोक नहीं सकता है, कुछ ना कुछ उसका अंश पर्याय में प्रकट है, उसको कहेंगे देशघाती। जैसे 12वें गुणस्थान तक मति ज्ञानावरण का उदय भी पाया जाता है और मति ज्ञान भी पाया जाता है, ऐसे शुद्ध ज्ञानावरण का उदय भी है और शुद्ध ज्ञान भी है, तो मति शुद्ध ज्ञान दोनों है। जो अवधि ज्ञानी है उन्हें अवधि ज्ञानावरण का उदय है फिर भी अवधि ज्ञान प्रकट है ना, हमें भी अवधि ज्ञानावरण का उदय है, पर कैसा है सर्वघाती रूप से, प्रकृति कैसी है देशघाती है, इसकी चर्चा अभी आएगी, शोक शम हम देखेंगे तब आएंगे। यहाँ गाथा 39 और 40 के आधार पर देशघाती एवं सर्वघाती प्रकृतियां उनका एक चार्ट बताएं। देखो मूल कर्म प्रकृतियां यहाँ लिखे ज्ञानावरण दर्शन और मोहनी और अंतराय, उसमें देशघाती और सर्वघाती दो दो भेद कर दिए। ज्ञानावरण में देशघाती कौन कौन सी है देख के बताओ आप, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण, और सर्वघाती कौन सी है नैन्सी भाई? बहुत अच्छा, दर्शनावरण में देशघाती कौन सी है जयाबेन? हाँ, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, और सर्वघाती कौन सी है दिव्याबेन? दर्शन। हाँ, पांच निद्रा कहो चलेगा। हाँ, मालूम है ना पांचों निद्राओं के नाम। अब मोहनी के बताने हैं आपको सरलाबेन, सर्वघाती कौन कौन सी है, मैंने सर्वघाती पूछी अपने देश और समय मिथ्या तो भी, हाँ, क्योंकि हमने उदय और बंध दोनों की अपेक्षा है ना, उदय सत्ता की भी अपेक्षा ले लेना। और सुशीला बहन देशघाती कौन सी है? हाँ, बहुत अच्छा, अंतराय की नलिन भाई, और देश सर्वघाती? हाँ नहीं है, सभी सर्वघाती ही है, सॉरी देशघाती ही है। हाँ, तो हमने देशघाती टोटल कितनी देखी 26 और सर्वघाती 21, तो साता वेदिनी कौन सी है नितिन भाई, देशघाती के सर्वघाती है? देशघाती, क्योंकि पूरा घात नहीं करते। आप क्या कहते हैं नितिन भाई?
क्या बता रहे
हैं? यहाँ दिया नहीं तो होगी नहीं। ये वेदिनीय कर्म कौन से प्रकृति का भेद है बोलो? अघाती है, और यहाँ हम देशघाती सर्वघाती घाती कर्मों के भेद है। हम आपको कुछ भी पूछेंगे, क्या पूछा है इसकी तरफ ध्यान चाहिए।
अंधेरे में गोली मत मारना ऐसा बोलो।
अब देखो इस तरह घाती कर्मों का देशघाती और सर्वघाती भेद बताकर अब अघाती कर्मों के प्रशस्त अप्रशस्त दो भेदों में से प्रशस्त प्रकृतियों के नाम और संख्या दो गाथाओं द्वारा कहते हैं। तो देशघाती सर्वघाती में देशघाती प्रशस्त प्रकृति है कि सर्वघाती प्रशस्त प्रकृति है? दोनों नहीं है तो क्या है दोनों? हाँ ठीक है, उसमें पुण्य प्रकृति कौन सी है? सभी पाप रूप ही है, यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण मुनि इतनी सारी जो हमने देखी 26 और ये 21 47 प्रकृति, एक भी प्रकृति पुण्य रूप नहीं है, सारी की सारी पाप रूप ही है। तो पुण्य पाप का भेद तो हम इतना पुण्य कर रहे हैं उसका कहीं तो कहीं कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? हाँ तो कहते अघाती में होगा। और अघाती का फल किसमें मिलेगा? शरीर में मिलेगा, मेजॉरिटी तो शरीर में मिलेगा, कुछ संयोगों में अनुकूलता लगेगी। तो उपवास करें हम और फल भोगे शरीर अरे उपवास क्या शरीर करता है, तकलीफ किसको होती है?
और
कोई नहीं करता है, फिर मानता है ना मैंने किया? कोई नहीं करता है तो क्यों करना चाहता है? चाहता क्यों नहीं करना? हाँ क्योंकि वो तो माना है ना उसको, इससे निर्जरा होगी, तप होगा, परंतु अंतरंग तप मालूम नहीं है। जीव अपने स्वभाव में स्थिर रहे, जैसा स्वभाव है उस रूप रह जाए, ज्ञानमय है तो ज्ञान को ज्ञान से जानता रहे, वो बातें मालूम नहीं है। और बाह्य कुछ क्रिया करके धर्म होगा ऐसा मान लिया उसने, भूला है जी, और उसको समझाने वाले भी अब कहेंगे उसकी योग्यता है तो समझाने
वो भी उतने ही भोले हैं समझाने वाले
क्योंकि उनको ही मालूम नहीं वो क्या समझाएंगे।
सभी के लिए
हाँ
सभी के लिए ये मान्यता है ना,
तो 608 ही जीव जाएंगे ना मोक्ष में अब कहते सभी जैनियों में यही मान्यता है। अभी उसको जैन होने की भी आवश्यकता नहीं, सभी पंथों में सभी मतों में पुण्य करो और आपका कल्याण हो जाए। अभी हम अघाती कर्मों के
एक बात हाँ, आपने बता दी कि ये सर्वघाती कितनी 47 प्रकृति है, वो कैसी है? पाप प्रकृति है। और हम ये तो जानते हैं कि हर समय यह जीव 8-7 कर्म बांधते हैं, आयु कभी कभी बांधते हैं, तो उसमें ये सर्वघाती बांध रहे हैं कि नहीं? अभी आप क्या कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं क्या पाप कर रहे हैं? स्वाध्याय उसमें भी सर्वघाती बांध रहे हो, पाप प्रकृति बन रही है, घबराना मत, कल से आना छोड़ना नहीं। मैं समझ गया आपके मन में विचार चले,
ये तो बनती रहेगी यथा योग्य जब तक विच्छित्ति नहीं होती है, इनमें से कितने का ही बंध चलता है, छूटेगा तो ऊपर के गुण स्थानों में छूटेगा। देखो तो अभी अघाती कर्मों के दो दो भेद बताएंगे। प्रशस्त का अर्थ होता है पुण्य प्रकृति और अप्रशस्त यानी पाप प्रकृति। ये पुण्य और पाप ये कर्मों के नाम है। शुभ भावों से पुण्य प्रकृति बनती है तो शुभ भावों को भी पुण्य कह देते हैं, ख्याल में आई बात? परिणामों को जो पुण्य पाप कह रहे हैं वो परिणाम पुण्य पाप नहीं होते, उपचार से उस कह देते हैं। शुभ भावों से पुण्य प्रकृतियां बनती है तो शुभ भावों को भी पुण्य कह देते हैं, अशुभ भावों से पाप और पाप दोनों ही, अघाती में भी पाप और ये तो पाप होगी होगी, तो इसलिए उसको पाप कह देते हैं। यहाँ उसका नाम है प्रशस्त और अप्रशस्त। तो अघाती कर्मों के प्रशस्त अप्रशस्त दो भेदों में से प्रशस्त प्रकृतियों के नाम और संख्या दो गाथाओं द्वारा कहते हैं। अब इस गाथा में प्रशस्त प्रकृतियों के नाम और उनकी टोटल संख्या बताएं, 41 नंबर और 42 दोनों है, युग्म कहते हैं। सादं तिन्नेवाहुं उच्चं नरसुरदुगं च पञ्चिन्दी देहाबन्धनसङ्घा गङ्गो वङ्गायुवन्नचो समचौरवज्जरिसहम् उवघादूणगुरुचक्कसगमणम् तसबारषट्ठी सातं त्रिण्णे वायुषी उच्चं नरसुरद्रिकं च पञ्चेन्द्रिया देहाबन्धनसङ्घाता अङ्गोपाङ्गानि वर्णचतुष्कम् समचतुरस्रवर्षषभ उपघातो न गुरुलषटकं सद्गमनं त्रसद्वादशाष्टषष्ठी प्रशस्त के नाम गिनाए। पहले में पहले सातम यानी साता वेदनीय, त्रिणी त्रिण्णेव आयुषी यानी तीन आयु, कौन से? तिरंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। देखिए यहाँ पर आयु में तीन आयु शुभ कही है और गति में दो ही गति शुभ कहेंगे, वो बात बाद में आएगी, नाम कर्म के डिटेल्स देखेंगे तब। तो ये तीन आयु, उच्च मैंने उच्च गोत्र, नरसुर द्विकम, नर द्विक ने मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गति और देव गत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय ने पंचेंद्रिय जाति गति फिर जाति, पांच शरीर, पांच बंधन, पांच संघात, ये सभी शुभ प्रकृतियां। तीन अंगोपांग, शुभ वर्ण गंध रस स्पर्श बीज, ये जो बीज है वो शुभ में भी आते हैं और अशुभ में भी आते हैं, जैसे शुभ स्पर्श और अशुभ स्पर्श, ऐसा अलग अलग। समचतुरस्र संस्थान, मैंने पहला नंबर का संस्थान लिया, वज्र ऋषभ नारा सहनन पहले नंबर का सहनन लिया, बाकी सब पाप प्रकृतियों में जाएगी। पंचेंद्रीय जाति यहाँ ली तो बाकी सब अन्य चार जातियां वो पाप प्रकृतियों में चली जाए। अगुरु लघु परघात उच्छ्वास, किसको छोड़ा? उपघात को छोड़ा है। हम चारों एक साथ बताते ना, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, उसमें उपघात जो है अपना ही घात करे ऐसे अवयव बने वो अशुभ प्रकृति है, नहीं शुभ प्रकृति में ली। घात करते पर अपना संरक्षण करते हैं ना।
जब कोई महिला ऊपर कोई अटैक करे तो नाखून से उसको ऐसा नोच लेते हैं।
नहीं अभी जो कोई जो अन्य भी जो हम देखते हैं तीरियन से देखेंगे।
नहीं बिल्ली है ना, उनके नाखून होते हैं।
अब ये बिच्छू क्यों काटता है? उसको ऐसा डर है ना कि कोई मुझे आके काटेगा, कोई अपने को डेंजर है, सांप है उसके जो विष है। आतप और उद्योग ये दोनों ही शुभ प्रकृतियां हैं, अशुभ है वो। परघात लिया है, उपघात नहीं लिया है। प्रशस्त विहाय गति, विहाय गति के दो भेद है, प्रशस्त अप्रशस्त, यहाँ प्रशस्त को लिया। त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक, ये क्रम से ले रहे जैसे हमने याद किया था। स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय यशस कीर्ति निर्माण और तीर्थंकर, ये 68 प्रकृतियां भेद विवक्षा से प्रशस्त ने पुण्य रूप है और अभेद विवक्षा से, अब ये भेद करके कहेंगे क्योंकि हमने स्पर्श रस गंध वर्ण के 20 लिए और बंधन और संघात भी लिए, अब 68 में से 26 कम करो कितने रहेगा है, 42 रह जाएगी। अभेद विवक्षा से 5 बंधन 5 संघात 16 वर्णाधिक घटाने पर 42 प्रकृतियां प्रशस्त है। सूत्र में कहा है, सूत्र है तत्वार सूत्र, सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम, यानी पुण्य प्रकृति कौन कौन सी है? सद्वेद्य यानी साता वेदनीय, शुभ आयु यानी तीन शुभ आयु है, शुभ नाम और शुभ गोत्र यानी उच्च गोत्र। तत्वार सूत्र अध्याय 8 के सूत्र 25 में ये बात बताई है। अब अप्रशस्त प्रकृतियों को भी दो गाथाओं द्वारा बताते हैं। यहाँ कितनी आ गई? 42। टोटल अपने पास कितनी है? हाँ देखो टोटल 122 है ना, 122 में से यहाँ 42 हुई,
80
कितनी रहेगी?
80
है, परंतु उसमें उदय रूप तो 84 हो जाएगी। क्यों? स्पर्श रस गंध ने यहाँ भी लिए वहाँ भी लिए, वो दोनों जगह ले लेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। क्या कहना चाहते हैं यहाँ? अशुभ नाम में, ये शुभ नाम में शुभ स्पर्श, शुभ रस, शुभ गंध, शुभ वर्ण दिया, भले वो उष्ण या हो या शीत हो, जो कुछ हो सबको शुभ लिया है यहाँ। कठोर भी शुभ कठोर अलग होगा, और जब अशुभ प्रकृतियाँ गिनाएंगे वहाँ भी अशुभ रूप से उसको ले लेना। देखो भेद विवक्षा करेंगे तो हमने यहाँ कितनी गिनी?
68
गिनी, और अभेद से उसी को 26 कम कर दिए तो 42 हो गए, बराबर। अभी कितनी रहेगी यहाँ? यदि हम 68 का हिसाब लगाएंगे 148 में, परंतु 68 माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो 20-20 दोनों जगह है, ये वो 20 कॉमन है, उसको यहाँ भी गिनना है वहाँ भी गिनना है।
48 गिने वहाँ पर, और यहाँ भी
वहाँ
100 करो,
42 गिने वहाँ, 42 गिने,
अच्छा,
और यहाँ 100 हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा ये टेबल देखो, 81 पृष्ठ का टेबल देखो। देख प्रशस्त प्रकृतियाँ कितनी? भेद रूप से 68, अभेद रूप से 42, और प्रशस्त प्रकृतियाँ भी भेद रूप से कितनी है? 98, और अभेद रूप से 42। अभी अकेला अभेद रूप देखना, अभेद रूप के यानी सभी प्रकृतियों के पुण्य और पाप दो भेद किए ना, तो 42 और 82 कितने होते हैं?
124।
क्या 124 है क्या हमारी? उसमें भी ये चार चार रिपीट है ना, और अभी भेद सुशीला बहन क्या नहीं आएगा?
अभेद रूप चार है ना, वर्ण।
देखो 42 और 82 टोटल करेंगे तो कितने होती है? 124। हाँ, और नहीं नहीं 120 होनी चाहिए, उसमें नहीं गिने, बंद रूप लिए यहाँ, सम्यक सम्यक उसको नहीं लिया।
120
भेद में तो लिए मोहिनी के 28, अभी भेद की करेंगे। देखो कितने प्रशस्त प्रकृतियां? 68, अप्रशस्त 98, तो कितनी हो गई? 166 हो गई। हाँ, उसमें 20 दोनों में कॉमन है, एक 20 उसमें से कम करो तो कितनी हो गई? हाँ 20 नहीं, वो 16 कम करनी है अपनी, 20
कम करना पड़ेगा।
हाँ 20 दोनों जगह लिए इसलिए 20। हाँ अभी हम कल ही पढ़ेंगे इनको, जो दो गाथा है और उसका अर्थ कल कहेंगे, और ये हिसाब फिर दोबारा कल लगाएंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। ये पंचलब्धि पुस्तक में भी ऐसे ये सारे चार्ट बना के बताए हैं और उसका हिसाब करके बताया है। कौन से? गुजराती में है
इसमें, इसमें क्या
वो? नहीं नहीं, उसमें करेक्शन किया है बाद में हमने। हाँ
किसने करेक्शन नहीं किया?
जावानी के ज्ञान से अरविंद।